आज का एक विषय निर्धारित कर दिया गया है, अंग्रेजी में लाइफ एंड योग, लाइफ इन योग। हिंदी रूपांतर उसका मैं करूंगा जीवन और योग, योगांतर्गत जीवन अथवा योगमय जीवन। कल तक हम लोग यह सुनते चले आ रहे थे और मानते चले आ रहे थे कि हमारा जो आधुनिक जीवन है वह विज्ञान का जीवन है, इट्स एन एज ऑफ साइंस, यह विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग है अर्थात मानव जीवन जो है और मानव जीवन का जो काल चल रहा है वह विज्ञानमय युग है। किंतु आज हम यह देख रहे हैं और बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि शायद विज्ञान के स्थान पर योग आ रहा है और सबसे अधिक प्रचलित चीज आज की है योग, जिसका खूब व्यापार भी हो रहा है। योग के नाम पर तरह तरह की चीजें देश में भी विदेश में भी प्रचलित हो गई है, और जो जितना अधिक उन्नत देश है उसमें योग के प्रति उतनी ही जबरदस्त मांग आरंभ हो गई है। कहते हैं न्यूयॉर्क में गली गली में योग हाउसेस हैं। योग का अभिप्राय क्या है और जितने प्रकार के योगों का प्रचलन हो गया है उनसे मनुष्य को मिल क्या रहा है और क्यों मनुष्य उस ओर दौड़ रहा है, क्यों उसकी इतनी जबरदस्त मांग होने लगी है, ये सब बातें बड़ी गंभीर चिंतन की बातें हैं। उन सब पर हम सब लोगों को गंभीर रूप से विचार करना होगा। इतना स्पष्ट है कि जीवन में एक नई मांग आकर के खड़ी हो गई है, वह मनुष्य को व्याकुल बनाए हुए है, क्योंकि मनुष्य अपने अब तक के जीवन से, अब तक जो कुछ उसने उपलब्ध किया अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी साइंस से, अपने राजनैतिक संगठन से, अपनी आर्थिक संपन्नता से, अपने सामाजिक सारे संबंधों से, जो कुछ मनुष्य ने अब तक प्राप्त किया और जिसका अर्जन करना जीवन भर उसने जारी रखा, वह सब कुछ मिलकर के अर्थात धन संपत्ति, राजनयिक सत्ता, सामाजिक हमारी सारी मधुरता आज मनुष्य के लिए काफी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बात इसी के साथ जुड़ी हुई यह दिखाई पड़ रही है कि जो कुछ उपलब्ध करने के लिए मनुष्य जीवन भर चेष्टा करता था, आज चेष्टा करने पर भी उसे वह उपलब्ध करने में समर्थ नहीं है। मैंने यह एक प्रकार की दोहरा जीवन में रिक्तता आ गई है। जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं तो प्राप्त होता नहीं है, वह स्थिर नहीं है, और प्राप्त हो जाता है तो उससे संतोष नहीं। आधुनिक जीवन विशेष रूप से एक प्रकार से हमें निमंत्रित कर रहा है, एक प्रकार से आवाहन कर रहा है कि देखो मुझे, मैं कितना विकट हो चला हूं। मनुष्य को जब हम जीवन और योग की चर्चा करते हैं तो केवल मनुष्य जीवन की ही चर्चा करते हैं। मैंने यही स्वाभाविक लगता है, यही प्रासंगिक प्रतीत होता है कि हम मनुष्य जीवन की चर्चा करें। यह एक अलग बात है कि हम मनुष्य जीवन की चर्चा भी बहुत ही अधूरे ढंग से करते हैं। अत्यधिक अल्प जो जीवन का अंग है, मनुष्य मानव जीवन का जो अत्यधिक अल्प, अत्यधिक छोटा अंग है, उसी को हम बढ़ा चढ़ा करके
अपने प्रमुख देखते हैं, अपने सामने रखते हैं, और वह जो बढ़ा चढ़ा अंग है वह है आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का जीवन केवल इसमें बीत रहा है कि कैसे वे अपना पेट भर सकें, और यही उनके सामने, यही है मानव जीवन। हजारों लाखों करोड़ों आदमियों के मन में हमारी जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था, और जो बदलती हुई व्यवस्था है, उसमें जो आक्रोश है, उसमें जो दुर्व्यवस्थाएं हैं, उसमें जो परस्पर कलह है, क्रोध है, लड़ाई है, भय है, शंका है इत्यादि, यह हमारे मन को घेरे हुए रहता है, और यही है मानव जीवन उसके सामने। उससे थोड़ा सा हट जाते हैं, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के जो आयाम है उनसे थोड़ा सा अलग हट करके देखते हैं, तो जो हमारा सामाजिक जीवन है, भाई भाई का संबंध, पड़ोसी के साथ संबंध, अन्य लोगों के साथ संबंध, उसमें हम घिरे रहते हैं, और उसी को हम कहते हैं यह है हमारा जीवन। इन तीनों चीजों के साथ, मैंने आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन, इसके साथ मनुष्य का जो भूतकाल का प्रचलित अभ्यास है वह जुड़ा हुआ और उसके साथ रहता है, और उसमें मनुष्य के आज तक के संजोए हुए विश्वास, उसकी मान्यताएं, उसके जीवन के विषय में सोचने का तरीका, ये सब शामिल है। बहुत थोड़े लोग हैं जो जीवन के इन अंगों से हटकर के थोड़ा बहुत जीवन को और अधिक गहराई में देखने का प्रयास। उस गहराई से मेरा तात्पर्य है मनोगत जीवन। मनुष्य का मनोगत जीवन क्या है, उसका चिंतनगत जीवन क्या है, उसका भावनात्मक जीवन क्या है, उसकी अभिप्सायें क्या हैं, इसकी ओर मुड़ने का बहुत ही थोड़े लोगों को अवसर मिलता है। जो थोड़ा बहुत उसकी ओर मुड़ जाते हैं, जीवन के अंतर को देखने का प्रयास करते हैं, वे समझते हैं कि मनुष्य का मनोगत जो जीवन है, विचारों का जीवन, भावनाओं का जीवन, विश्वास का जीवन, मान्यताओं का जीवन, बस वही सब कुछ है। यह सब मिलाकर के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, मनोगत, मनोवैज्ञानिक, यह सब मिलाकर के भी जीवन का बहुत छोटा सा अंश है। हम आर्थिक जीवन को एक भूत की तरह से अपने ऊपर छाया हुआ जीवन देखते हैं, कभी भी हम इस बात का प्रयास नहीं करते कि मनुष्य के जीवन का, उसके चारों ओर विद्यमान प्रकृति के साथ कितना गहरा संबंध है। मनुष्य जब अपने शारीरिक जीवन को लेकर के विचार करता है तो रोटी कैसे मिले, कपड़ा कैसे मिले, मकान कैसे मिले, इसकी बहुत चिंता करता है, कभी भी यह नहीं देखने की चेष्टा करता कि उसे हवा, धूप, यह सब जो मिला हुआ है उससे उसके जीवन का क्या संबंध है। मेरा संकेत केवल इतना है कि जब हम अपने जीवन को देखने का प्रयास करते हैं तो बहुत ही अधूरी दृष्टि हमारी रहती है। सूर्य से जो एनर्जी आ रही है और जिस एनर्जी से यहाँ का सारा जीवन, मनुष्य का जीवन, पशु पक्षियों का जीवन, वनस्पति का जीवन, यह सब कुछ किस तरह से पुष्ट हो रहा है, इस ओर हम ध्यान नहीं देते। केवल स्थूल शारीरिक भूमिका पर ही हम इसका ध्यान नहीं देते। हम राजनीतिक जो व्यवस्थित हमारा जीवन है उसकी ओर जब देखते हैं तो कुछ राज्यों को देखते हैं, कुछ नेता लोगों को देखते हैं, कुछ मिनिस्टर्स को देखते हैं, कुछ प्रेसिडेंट्स को देख लेते हैं, इन्हीं को देखते हैं। इन सबके पीछे इन सब का भी संचालन करने वाली कोई शक्ति मनुष्य के जीवन का निर्माण कर सकती है या नहीं, और कर रही है कि नहीं, अथवा हम स्वयं भी अपने व्यवस्थित जीवन में कुछ योग दे सकते हैं कि नहीं, और हमारा कुछ योग है या नहीं, इसका कभी हम चिंतन नहीं करते। मैं लौट करके उसी संकेत पर आऊं कि हम जब कभी भी जीवन की चर्चा करते हैं तो बहुत ही छोटे से उसके अंश में हम फंस जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। कभी भी हम जीवन को समग्र रूप से समझने का, देखने का प्रयास नहीं करते। कदाचित हम अपने जीवन का समग्र संपूर्ण रूप देखने का प्रयास करेंगे तो पता लगेगा कि मानव जीवन केवल इतने तक सीमित नहीं है, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। और अपने उस विस्तार में मानव जीवन संपूर्ण विश्व जीवन के साथ एक है, संपूर्ण प्राकृत जीवन के साथ वह मिला हुआ है। और जब हमारे सामने यह चित्र आता है तो निश्चयात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि यदि हम जीवन को समझना चाहते हैं तो अपने बाह्य जीवन को केवल आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक सीमाओं में बांध करके हम नहीं समझ सकते, हम उसको संपूर्ण प्रकृति के संदर्भ में ही समझ सकते हैं। और उसी प्रकार से हम अपने अंतर जीवन को केवल मनोगत, केवल भावनागत, केवल चिंतनात्मक दृष्टि से नहीं समझ सकते, और हमारे मन की गहराई में भी कुछ सत्ता है जिससे हमारा संबंध है, और जिससे हमारा केवल संबंध नहीं है, वास्तव में जो हम कुछ भीतर से हैं उसको बिना जाने, उसको बिना समझे हम अपने जीवन को नहीं समझ सकते। तो न हम अपने जीवन को बाह्यतः समझ सकते हैं, न हम अपने आंतरिक रूप में समझ सकते हैं, जब तक कि हम संपूर्ण जीवन को नहीं समझे। इस संपूर्ण जीवन को समझने की दृष्टि से स्पष्ट है कि ऐसा अवसर हम लोगों को नहीं मिलता है, यह बहुत सरल काम भी नहीं है, सबके बस का भी नहीं। लेकिन मुड़ने की गुंजाइश सबके लिए है, देखने की गुंजाइश सबके लिए है, आवाहन सबके लिए है। और इस प्रसंग में जो हमें श्री अरविंद का प्रकाश प्राप्त है उसके आधार पर और उसके उसकी पृष्ठभूमि में उपनिषद, वेद, गीता इत्यादि ऋषि महर्षियों का अनुभव, योगी जन का अनुसंधान, यह सब उसके आधार पर यह कहा जा सकता है, जो कि हमने अनेक बार सुना है, मनन करने का अवसर मिला हो चाहे न मिला हो, लेकिन सुना अनेक बार है कि यह संपूर्ण जीवन भगवान से उत्पन्न, परम तत्व से उत्पन्न, हम भगवान कहें, परम तत्व कहें, ब्रह्म कहें, परमात्मा कहें, परमेश्वर कहें, कोई भी शब्द कहें, उससे उद्भूत है और उसी से यह संचालित है, उसी में यह प्रगत है, उसी में विलीन होता रहता है, उसी में वह प्रगति करता रहता है, और इसीलिए उसी से भरा पूरा है। यह संपूर्ण जीवन, मानव का जीवन उसके अंतर्गत, संपूर्ण जीवन के अंतर का आशय है प्राकृत जीवन, विश्वगत जीवन, समस्त जीवन जिसके अंतर्गत मनुष्य का जीवन है, मनुष्य का बाह्य जीवन भी, मनुष्य का अंतर जीवन भी, वह सब कुछ एक परम तत्व से उद्भूत, उसी में प्रगत और उसी में उसका संचार, संचालन, सब कुछ उसके अंतर्गत होता रहता है। और यह अपने आप में एक अद्भुत बात है, अद्भुत वस्तु है, अद्भुत तत्व है, अद्भुत सत्य है। इसको और गहराई से बताते हुए श्री अरविंद ने कहा है कि इसको एक दूसरे ढंग से यूं कहा जा सकता है कि यह संपूर्ण विश्व भगवान का ही एक मूर्त रूप है, भगवान ही इसमें प्रकट है। और भगवान प्रकट है लेकिन भगवान नहीं अपने आप को इस प्रकट जड़ विश्व में विलीन कर दिया है, वे ही इसमें अंतर्लीन है और वे ही अंतर्लीन होते हुए इसकी गतिविधियों के द्वारा अपने आप को अधिकाधिक प्रकट कर रहे हैं। जैसे किसी पेड़ में उस पेड़ की संपूर्ण प्रकृति सारे में छाई हुई रहती है और एक बीज में भी केंद्रित हो जाती है, उस बीज को अगर बो देते हैं तो उस बीज में उस पेड़ की सारी सारा इतिहास मौजूद रहता है और सारा भविष्य उसमें मौजूद रहता है और सब कुछ संभाव्य रूप में उसमें निहित रहता है। इस विश्व में उसी प्रकार से भगवान ही निहित हैं, अंतर्निहित हैं, वे ही इसमें लीन हैं। और इसकी जितनी जितनी इसकी प्रगति हो रही है, जितनी इसमें गतिविधि है, उसमें भगवान ही अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, अथवा यूं कहें कि अपने आप से अपने आप को ढूंढ रहे हैं, अपने आप से अपने आप को पा रहे हैं, अपने आप से अपने आप को अपने आप ही के साथ एक हो रहे हैं। इसी का नाम है योग, वह योग जो संपूर्ण प्रकृति में जारी है, इसे हम प्राकृत योग कह सकते हैं, विश्व योग कह सकते हैं। श्री अरविंद का एक वाक्य है, उनका जो अद्भुत ग्रंथ है योग पर, सिंथेसिस ऑफ योग, उसका जो परिचय है, उस परिचय के कई अंश हैं, उन अंशों में सबसे पहले अंश में इस विषय पर चर्चा करते हुए एक निष्कर्षात्मक वाक्य उनका अंत में है, ऑल लाइफ इज योग। इस वाक्य को हम लोगों ने अनेक बार सुना है, अनेक बार हमने कथन किया है, लेकिन सुनना और कथन करना कभी भी काफी नहीं होता, क्योंकि इसमें निरंतर अधिकाधिक चिंतन की और मनन की, ध्यान की इसमें गुंजाइश बनी रहती है, क्योंकि यह सत्य अभी भी हमारे लिए प्रकट होने को बाकी है। संपूर्ण जीवन योग है, यह सारा विश्व जीवन, यह सारा प्राकृत जीवन योग है। यह सुनना, पढ़ लेना, कह देना एक बात है, और इसको गहराई से देखना एक दूसरी बात। इसका कभी कभी हल्के ढंग से हम लोग दुरुपयोग कर डालते हैं, वो एक अलग बात है। ऑल लाइफ इज योग का हम एक मानव जीवन को लेकर के, केवल के मनुष्य जो कुछ कर रहा है सब योग है, और जो कुछ कर रहा है वो सब योग हो सकता है, इत्यादि इस तरह की चर्चा करते हैं, मानो ऑल लाइफ इज योग केवल मानव जीवन से संबंधित है। मैं निवेदन कर दूं, श्री अरविंद का यह वाक्य ऑल लाइफ इज योग केवल मानव जीवन को लेकर के नहीं है, न ये मानव जीवन का वर्णन है और न ये मानव जीवन मात्र तक सीमित है, यह संपूर्ण विश्व को लेकर के है, उस विश्व विधान को लेकर के है जिस विश्व में भगवान ही प्रकट हैं, भगवान प्रकट हो रहे हैं, भगवान निहित हैं, छुपे हुए हैं, अपने को ढूंढ रहे हैं, पा रहे हैं। ऑल लाइफ इज योग, यह है जीवन, जीवन और योग। वास्तव में यह जीवन, अगर हम अपने जीवन को, मानव जीवन को केवल काट करके, अलग करके, उसके खंड खंड करके नहीं देखें, उसको अगर हम राजनैतिक और आर्थिक और सामाजिक केवल संदर्भों में बांध करके उसको न देखें, सारे जीवन को देखें, मनुष्य के सारे जीवन को देखें, और संपूर्ण जीवन को देखते हुए विश्व जीवन के साथ उसका संबंध देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि यह संपूर्ण मानव का जीवन भी उसी प्राकृत योग के अंतर्गत, उसी के अधीन है। और यदि वह उसके अधीन, उसके अंतर्गत है, तो मानव जो कि सचेत रूप से अपने जीवन को जी रहा है, प्रकृति, संपूर्ण प्रकृति किस तरह से चल रही है, वह सचेत रूप से चल रही है अथवा वह अचेत रूप से चल रही है, उसमें शायद अब तक हम लोगों की जानकारी यही है कि प्रकृति प्रकृति के रूप में अचेत रूप से चल रही है। यद्यपि उसकी इस अचेत अवस्था में भगवान का विधान मौजूद है। मनुष्य का जीवन मनोगत जीवन होने के नाते चिंतनमय जीवन है, भावनामय जीवन है। वह चाहता है तो वर्णन करता है कुछ वस्तुओं की, वह चाहता है वैसा अपना जीवन का निर्माण करता है। उसमें विल है, उसमें अपने संकल्प हैं, उसके अपने इरादे हैं, उसकी अपनी अभिप्सा है, उसका अपने उसकी अपनी स्मृति है, उसके अपने सीखने का एक ढंग है और आगे की ओर बढ़ने का उसका एक संकल्प है। इसलिए मनुष्य जीवन जो है वह सचेत जीवन, यह सचेत जीवन मनुष्य का यदि सारे जीवन के रहस्य को ग्रहण करके चले तो केवल कुछ परिस्थितियों का दास अपने को मान करके, चाहे वे परिस्थितियां कोई भी हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, अथवा अपने को केवल परंपरा का गुलाम मान करके चलने वाला मनुष्य नहीं रह जाएगा। वह स्वयं भगवान के इस विधान के साथ एक पार्टिसिपेंट हो जाए, मैंने इसकी संभावना है। प्रकृति किस तरह से अपने विधान को पूरा कर रही है, अचेत रूप में भी और मानव के द्वारा सचेत रूप में भी, और इस प्रकृति के द्वारा भगवान किस तरह से अपना संचालन कर रहे हैं, भगवान सारे विश्व का संचालन कैसे कर रहे हैं। ये सारे सूत्र हमारे बड़े पुराने सूत्र हैं, वास्तव में यही सत्य है जीवन का। गीता की घोषणा बिल्कुल स्पष्ट इस दिशा में है, सबके हृदय में, सभी भूत प्राणियों के हृदय में भगवान मौजूद हैं और वे ही सब सारा यंत्र चला रहे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया। सबके भीतर, प्रत्येक वस्तु के भीतर, कण कण के भीतर, जो परमाणु की व्यवस्था है उसमें भी, और मनुष्य में जो प्राण व्यवस्था है उसमें भी, और मनुष्य में जो मनोगत अवस्था है वे उस सब में भी भगवान का ही संचार है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, गीता का वाक्य, सब कुछ मुझसे प्रवर्तित होता है, मुझ में ही सब कुछ है। मत्सानि सर्वभूतानि, सब मुझ में है, मुझे ही सब कुछ उद्भूत है, मुझ में ही सब, मेरे द्वारा ही सब कुछ संचालित है। ये सारे सूत्र हमें उपनिषदों से, वेद आदि से और गीता से बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। हमने कितना इनको समझा है नहीं समझा है अलग बात है, हमको गीता कंठ होती है लेकिन फिर भी हम उनके सूत्रों को सचेत रूप से नहीं समझते, यह एक अलग बात है। लेकिन वे सब की सब बातें घोषित हैं पहले से, और मनुष्य के लिए यह संभव है, यही मनुष्य के लिए एक आवाहन है कि वह अपने सचेत जीवन को इस परम सत्य के साथ जोड़ करके अपने जीवन को योगमय जीवन बना ले। बिना इस परम रहस्यमय सत्य के साथ अपने को जोड़े हुए हम अपने को अलग काट करके रखे रहते हैं, और यह अलग काट करके रखना है चाहे तो आर्थिक परिस्थितियों का दास होकर के जीना, अथवा राजनीतिक परिस्थितियों का दास होकर के जीना, अथवा केवल सामाजिक परिस्थितियों और परंपरागत परिस्थितियों में जकड़न के साथ जीते रहना। और यह जीवन जो अपने को अलग काट करके जीना है, यही है अयुक्त जीवन, जो जोड़ा हुआ नहीं है। माने हमारा जो जीवन है वह मूलतः तत्वतः भगवान के अंतर्गत है, किंतु हमारी चेतना में, हमारी मान्यता में, हमारी अहंकारमय दृष्टि में हमने अपने को अलग थलग किया हुआ है, और अलग थलग करना ही है अयोग, यही है अयोग। और अपने इस सत्य को समझना, जीवन के इस रहस्य में उतरना, अपने को इस जीवन के रहस्य के साथ एक कर देना, यह है भगवान के साथ, उस परम तत्व के साथ, उस परम रहस्य के साथ अपने को मिला देना, और अपने को मिला देना उसके साथ है योग। मैंने आरंभ में निवेदन किया था कि योग के नाम पर, योग की जो आज इतनी बड़ी मांग होने लगी है, उसके नाम पर तरह तरह की धारणाएं, भ्रांत भ्रष्ट धारणाएं स्थान पा गई, एक व्यापार चल पड़ा है। योग की चर्चा शुरू हुई तो चाहे तो हमारे मन में आता है ऐसे लोगों का तमाशा कि जो बल्ब को पीस करके चबा जाएं और तरह तरह के दूसरे तमाशे दिखाएं और हम कहें ये योगी है, अथवा किसी प्रकार के कुछ आसन प्राणायामों से अपने कुछ चमत्कार दिखा देना, अपने ऊपर से हाथी को निकाल देना, यह जब आता है तो हम कहते हैं ये योग है, अथवा कुछ क्षणों में ही कुछ का कुछ अनुभव करा देना, भले ही वो चर्च के माध्यम से हो, भले ही वो गांजा पिला करके हो, वह भी योग के नाम पर चलता है, अथवा किसी प्रकार के कुछ कोर्सेज, कुछ डॉलर की फीस ले करके हम किसी किस्म का एक खास आसन या खास किस्म की मन की कुछ क्रिया, किसी प्रकार का कोई मेडिटेशन सिखा देते हैं, वह योग के नाम पर चलता है। मुझे उसकी चर्चा विशेष करनी नहीं है, आप लोग सब जानते हैं और अखबार भरे हुए हैं। योग के नाम पर इन सब की जितनी चर्चा होती है उसमें कितना योग है मुझे नहीं मालूम। योग का व्यापार जरूर दिखाई पड़ता है, अपने अपने ठप्पे सबने योग के बना रखे, ट्रेडमार्क इन योग, देर आर ट्रेडमार्क इन योग। गीता यानी हमारा एक सौभाग्य है कि हम भारतवर्ष में हैं, भारतवर्ष में होने के नाते योग हमारे लिए स्वाभाविक चीज होनी चाहिए, किंतु योग का अर्थ यहां केवल पातंजलि योग नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादि वाला, यहां के जीवन में जो योग है, यहां के संस्कारों में, यहां की संस्कृति में जो योग की चर्चा है, उसमें महान योग शास्त्र है गीता। गीता का नाम है योग शास्त्र, प्रत्येक अध्याय के अंत में तत्सदित श्रीमद भगवत गीता सूपनिषत् ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अमुक योगो नाम अमुक अध्याय, योग शास्त्र है, ब्रह्म विद्या है। और हजारों वर्ष से हमारे पास है यह योग शास्त्र, जिसमें निरंतर आदेश दिया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि हमने उसको हिंदुओं का ग्रंथ कह दिया और अपने को जो हिंदू नहीं मानते उन्होंने अपने को आराम से उसकी उससे वंचित कर लिया। मैंने मनुष्य जाति का एक बड़ा विचित्र विडंबना और दुर्भाग्य यह है कि यहां भगवान को भी बांट बांट करके रखते हैं। क्राइस्ट केवल क्रिश्चियंस के हो गए, मोहम्मद केवल मुसलमानों के हो गए और श्री कृष्ण केवल हिंदुओं के हिस्से में आए। क्रिश्चियंस ने, मुसलमानों ने अपने आप को बंद कर लिया, कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं। हिंदुओं ने अपने आप को बांध लिया अलग कि हमारा क्राइस्ट से कोई संबंध नहीं। यह दुर्भाग्य मानव जाति का कि यह भगवान को भी बांट लेता है, ये किसी के हिस्से में आए वो किसी के हिस्से में आए। गीता संपूर्ण मानव जाति का शास्त्र है, योग शास्त्र है, विद्या है, ब्रह्म विद्या, और उसमें जीवन व्यापी योग है। अर्जुन को पुनः पुनः यह आदेश होता है कि अर्जुन तुम योगी बनो, तप से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से योग श्रेष्ठ है, इसलिए तुम योगी बनो। और योगी कब बनो कि जब ये युद्ध समाप्त हो जाए तब फिर तुम आसन प्राणायाम करना, शीर्षासन करना, यह उनका आदेश है। यह आदेश नहीं है, उनका आदेश है तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। अर्जुन प्रत्येक काल में क्षण क्षण में तुम योगी बनो, योग युक्त हो जाओ, और जो कुछ कर रहे हो वह योग से करो। योगस्थ कुरु कर्माण, योग में स्थित होकर के कर्म करो। जितने भी तुम्हारे कर्म हो रहे हैं तो जरा सा हम कल्पना करें कि वहां अर्जुन का योग कौन सा हो रहा है। अर्जुन को आदेश दिया है देखो अब कर्ण को तुम्हें मारना है। अर्जुन बेचारा परेशान था पहले, उसके चित्त में सारी धर्म और परंपरा और कुल की नीति और आदर्श और नीति और सब के सब आया और उसने कहा कि क्या, मैं तो बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, यहाँ मेरे गुरुजन खड़े हैं, ये मेरे सारे संबंधी खड़े हैं, मेरे सारे कुल का नाश हो जाएगा, कुल के नाश हो जाने से सारे धर्म नष्ट हो जाएंगे, धर्म नष्ट हो जाएंगे तो बचेगा क्या, हम काहे के लिए लड़ेंगे, सब कुछ तो नाश हो जाएगा। तो धर्म के आधार पर, समाज के आधार पर, नीति के आधार पर जितने तर्क उसने दिए हैं सब अर्जुन की मनोभूमिका पर सब सही है, अर्जुन भ्रांत नहीं है, भ्रांत व्यक्ति इस तरह के तर्क नहीं रख सकता। लेकिन जितने उसके सामने आदर्श हैं वे सारे के सारे आदर्श आज उसको एक ऐसे स्थान पर ले आए हैं कि जहां वे ही आदर्श उसके लिए एक विषाद का कारण बन रहे हैं। और वह श्री कृष्ण से पूछता है कि मैं क्या करूं, निश्चित रूप से मेरे लिए श्रेय क्या है मुझे बताइए। और उनका श्री कृष्ण का आदेश है, यह नहीं कि तुम लड़ो कि नहीं लड़ो बल्कि योगी हो जाओ। वो कह रहा था कि मैं तो भीख मांग लूंगा, उसने अर्जुन की यही वाणी, वो कहता है कि इस खून से लथपथ राज्य को भोगने की अपेक्षा भैक्षम अभी हलो के यह अधिक अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न प्राप्त करूं। तब तो उससे कह दिया कि मूर्ख हो तुम, पंडितों की बातें करते हो और जो अशोच्य है उसका तुम शोक करते हो, लेकिन कह रहे हैं कि योगी हो जा। अगर योग का अर्थ यही होता कि एकांत में चले जाए, भिक्षा का अन्न प्राप्त करने और लंगोटी लगा करके कहीं ध्यान मग्न होकर के बैठ जाए, तो अर्जुन ने क्या बुरा किया था। वहां अर्जुन से कह दिया नहीं, तुम्हें मारना है इनको और योगी हो जाओ। तो अर्जुन का योग है अपने गुरुजन की हत्या करना, विलक्षण बात है। उससे कहा जा रहा है तुम निमित्त हो जाओ, निमित्त मात्रम भव सव्य। और किसके निमित्त हो जाओ, उसके जो कहता है कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृत्तः, मैं काल हूं, महाकाल हूं और इस समय मैं लोक को लोक का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हो गया। वह जो परम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वरूप है वह केवल सृजन नहीं करता, वह सबका संहार भी कर डालता है, वह सबको मिटा भी डालता है। तो उस कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृत्तः, काल रूप जो प्रवृत्त भगवान है जो सबका क्षय सारे लोकों का क्षय करने के लिए इस समय, उसके हाथ में तुम निमित्त हो जाओ, अर्थात उसके साथ उसके विधान के साथ अपने मन को, अपने कर्म को, अपनी चेतना को, अपने संकल्प को, अपनी सारी चित्तवृत्ति को उसके साथ एक कर। वह अगर सबका क्षय करता है तो तुम्हारे द्वारा सबका क्षय हो, और वह यदि निर्माण करता है तो तुम्हारे द्वारा निर्माण हो। तुम अलग हट करके न निर्माण करो और न तुम क्षय करो, तुम भगवान के साथ एक होकर के करो। तो जहां गीता जैसा शास्त्र हम लोगों को मौजूद देखने को मिलता है और वहां स्पष्ट लगता है कि क्या योग नहीं हो सकता, यदि गुरु की हत्या करना और अपने सगे संबंधियों की हत्या करना यदि योग हो सकता है तो हमारा ऑफिस जाना योग नहीं हो सकता, हमारा अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना योग नहीं हो सकता, हमारा घर में बर्तनों को साफ करना योग नहीं हो सकता, कपड़े को धोना योग नहीं हो सकता, झाड़ू लगाना योग नहीं हो सकता। और वहां देखें कि योग कितने प्रकार के होते हैं, आज की दुनिया मात हो जाएगी, आज चाहे जितने ब्रेन्स लग जाएं, एक तो प्रत्येक अध्याय अपने आप में योग है और प्रत्येक अध्याय के अंतर्गत कई कई योगों की चर्चा और योग की तरह तरह की परिभाषाएं हैं गीता में। और उनमें सबसे अधिक विलक्षण एक योग है जो पहला अध्याय, उसके नाम पर ध्यान दीजिए, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। अर्जुन का विषाद योग है, विषाद जो बीमारी है एक प्रकार की, विषाद जो मन को, मैंने जो मन को बिल्कुल गिरा डालती है, वह विषाद जिसमें उसका गला सूख गया है, जिसमें उसकी चमड़ी जल रही है, गांडीव हाथ से सरक रहा है, बोल भी नहीं पा रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, वह उसका विषाद सारे शरीर पर सारे मन पर उसके छाया हुआ है, बुद्धि भ्रमित है, कुछ भी वो सोच नहीं पाता है, वह विषाद भी उसका गीताकार कहते हैं विषाद अर्जुन विषाद योगो नाम, योग नाम उसके साथ जोड़ दिया गया, यह विषाद योग है उसका। यह विषाद कैसे योग हो सकता है? और तो सब योग हो सकते हैं, मेडिटेशनल योग हो सकता है, आसन प्राणायाम का योग हो सकता है, ये विषाद भी योग हो सकता है, लेकिन गीताकार ने नाम दिया है अर्जुन विषाद योग को, क्योंकि यह विषाद ही उसे भगवान की ओर ले जा रहा है, यह विषाद ही उसे भगवान के साथ मिला रहा है। यह विषाद की अवस्था नहीं होती तो अर्जुन कभी शरण नहीं आता, कभी नहीं कहता कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यत् श्रेयं स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। त्वां प्रपन्नम् भगवान की शरण गति, भगवान की शरण, भगवान के प्रति अपने को निवेदित करना, भगवान का अपने आप को शिष्य मानना, भगवान के से पूछना कि तुम मुझे संभालो, तुम मुझे बताओ, यह जो है भगवान के साथ जो संबंध जोड़ा है वह उसके विषाद ने जोड़ा है, उस नाते यह अर्जुन का जो विषाद है वह भी योग बन जाता है। तो अब श्री अरविंद की वह भूमिका कि संपूर्ण जीवन और जीवन का मनुष्य का माना हुआ जीवन नहीं बल्कि वास्तव जीवन, केवल अपने कुछ जीवन के अंशों को सारे जीवन से अलग काट करके रख देने वाला जीवन नहीं, आर्थिक राजनीतिक इत्यादि, बल्कि प्रकृति के साथ संयुक्त जीवन मनुष्य का, यदि यह सब कुछ भगवान का योग है, तो इस संदर्भ में इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए संपूर्ण मानव जाति के लिए एक यह सूत्र मिल सकता है कि फिर हमारा जो कुछ जीवन है सचेत रूप से भी वह योग के अंतर्गत आ सकता है। उस दशा में योग हमारे जीवन का अंग नहीं होगा, हमारा जीवन ही योग का अंग हो जाएगा। आज जब कभी भी हम योग के अभ्यास की चर्चा करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा ये हम करेंगे ये हम करेंगे, हम उसको मैंने खराब किस्म से योग का प्रचार प्रचार जो प्रचारमय जो रूप स्वरूप आ गया उसकी चर्चा नहीं करके, जो योग का अच्छा साधनामय जो रूप है उसको लेकर के भी हम जब कभी उसके संबंध में चिंतन करते हैं, संकल्प करते हैं, तो यही सोचते हैं कि अच्छा प्रातःकाल इतनी देर बैठेंगे, ध्यान करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे, वह जीवन का एक हमारा प्रोग्राम के अंतर्गत एक आइटम रहता है, जीवन के 24 घंटे का जो प्रोग्राम है उसमें एक आइटम। किंतु यदि श्री अरविंद श्रीमद् भगवद गीता इत्यादि की यह भूमिका जिसकी मैंने अभी चर्चा की थोड़ी सी, यह हमारे भीतर आ जाए, यह हमारी मान्यता में बैठ जाए, यह परिप्रेक्ष्य अगर हमारी कल्पना में आ जाए, तो हमारे लिए यह धारणा कठिन नहीं होगी कि योग हमारे जीवन का एक आइटम नहीं है बल्कि हमारा संपूर्ण जीवन योग के अंतर्गत योग के अधीन हो सकता है, और तब हमारा जीवन योगमय जीवन हो सकता है। बहनों और भाइयों, यह हो सकता की बात है, हो सकने की बात है, संभावना की बात है। हम उसकी ओर कितना बढ़ सकते हैं, बढ़ना चाहते हैं, यह हमारे अधीन है। और आज का जो जीवन है वह तो ऐसे स्थान पर आ गया है कि जो स्पष्ट लगता है कि अब दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं, जो जीवन एक विशेष क्रम से एक विशेष संस्कारों से कुछ व्यवस्थाओं के साथ, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ जो जीवन चल रहा था वो अब चल नहीं पा रहा है, ये हम देख रहे हैं। समाज छिन्न भिन्न हो रहा है, एक एक घर एक एक कुटुंब अपने भीतर से बिखर रहा है, राजनीतिक व्यवस्थाएं एक एक रात में बदल जाती हैं, आर्थिक हम कितना ही प्लानिंग करें। जब हम विद्यार्थी थे तो एक चीज आया करती थी, मैं तो इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी नहीं था लेकिन सभी इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी जानते हैं कि उसमें एक बजटिंग नाम की चीज आया करती थी कि अपने आमदनी को हम ऐसे ऐसे खर्च करेंगे तो हमारा जीवन व्यवस्थित होगा। आज प्लान कर ले हम, आज करके दिखा दें बजटिंग, अपने घर का बजटिंग आज असंभव हो गया। घंटे भर की सूचना में पेट्रोल कहीं से कहीं पहुंच गया, क्या बजटिंग कोई करेगा। मेरा तात्पर्य यह है कि परिस्थितियां ऐसी विकट हो गई हैं आज कि हम किसी प्रकार की भी आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर अपने आगे के जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित, संपन्न नहीं बना पा रहे हैं। सब कुछ अनिश्चित और यह अनिश्चितता की जो दशा है वह जितनी कल थी आज उससे अधिक है, और जितना आज अनिश्चय है कल उससे और ज्यादा अनिश्चित हो जाएगा। हमारे देखते, हमारे आपके देखते देखते ब्रिटिश राज्य गया और कुछ ही तो वर्ष हुए हैं, 25 वर्ष होते ही क्या है, 26 वर्ष होते ही कितने, और उन 25 वर्षों में पिछले 2 वर्षों में जितना परिवर्तन आया उतने उससे पहले 5 वर्षों में नहीं आया, और जितने 5 वर्षों में पहले आया उतने उससे पहले 15 वर्ष परिवर्तन नहीं आया। और ये एक्सेलरेटेड स्पीड से परिवर्तन, और एक ऐसा परिवर्तन कि जिसमें मनुष्य भौचक्का हो रहा है, किसी के पास कोई उपाय नहीं। दो तीन वर्ष पहले तक अमुक प्रेसिडेंट ने यह कहा है, अमुक देश ने यह अपना निर्णय लिया है, उसके आधार पर अब यह हो सकता है, यह होगा। हम प्रेडिक्ट करते थे, समथिंग लाइक पॉलिटिकल प्रेडिक्शन, इकोनॉमिक प्रेडिक्शन, इन ए वे हिस्टोरिकल प्रेडिक्शन। आज प्रेडिक्शन कोई करके दिखा दे, व्हाट प्रेडिक्शन कैन बी मेड, अनप्रेडिक्टेबल, द फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। जिन आधारों पर हम प्रेडिक्शंस करते थे वे आधार अब काफी आधार नहीं है कि हम भविष्य के संबंध में कुछ प्रेडिक्शंस कर सकें। जब यह दशा हो गई है तो मनुष्य पागल तो हो ही जाएगा, बौखला तो जाएगा ही, और वही आज के जीवन में हो रहा है। गरीबी से बौखलाया हुआ, अमीरी से बौखलाया, जिस दिशा में जाता है असंतोष लगता है। पुराने आधार चरमरा करके टूट गए, छिन्न भिन्न हो गया है समाज, छिन्न भिन्न हो रही है राजनीति, छिन्न भिन्न हो रहा है सारा हमारा आर्थिक ढांचा। यह मनुष्य के जीवन में जो घड़ी आई है, पता नहीं ऐसी कभी घड़ी कोई आई थी कि नहीं, और आज जो जो घड़ी दिखाई पड़ती है कल की कल्पना नहीं है कि कल और कौन सी घड़ी आ रही है। यह समय आ गया है कि हम चेतें। शायद हमारे भीतर बहुत बड़ी जड़ता इस बात को लेकर के आ गई थी कि अरे हमारी तो ये व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं के आधार पर हम सुरक्षित हैं, हमारी ये मान्यताएं हैं, इनके आधार पर हम सुरक्षित हैं, हमारे ये असट हैं, इनके नाम पर हम सुरक्षित हैं।
मुझे मालूम नहीं, बिकॉज आई एम नॉट एट पीस।
तो ये जो परिस्थिति आज की जीवन में आ गई है, इसका सामना हम सब लोगों को करना पड़ रहा है। हम दुखी चाहे जितने हों, निरुपाय जितने दुखी हों उससे अधिक निरुपाय हैं, और हम दूसरों पर चाहे जितने दोषारोपण दें, समर्थ कोई भी नहीं है कि आज की इस परिस्थिति को संभाल सके। तो जो हमारे बने हुए आधार थे, जिनके बल पर हम समझते थे कि हम ये कर लेंगे, हम वह कर लेंगे, हम अपने जीवन को इस तरह से सुरक्षित बना लेंगे, हम अपने जीवन को इस प्रकार से समृद्ध कर लेंगे, वे सब के सब आधार अब नहीं चलेंगे। और मनुष्य को जगना पड़ेगा, मनुष्य को सचेत होना पड़ेगा, वह घड़ी आ गई। आज से 3-4 वर्ष पहले का दिया हुआ श्री माता संदेश आज के इस वातावरण में फिर से मैंने निरंतर प्रतिध्वनित होता दिखाई पड़ रहा। 3-4 वर्ष पहले का मतलब यह नहीं है कि वह उस समय के लिए लागू था। मेन कंट्रीज कॉन्टिनेंट द चॉइस इज इंपेरेटिव ट्रूथ और द अबे मनुष्यों देशों महाद्वीपों अब वर्ण करने का समय ऐसा आ गया है कि वर्ण करना अनिवार्य बन गया। अब विकल्प नहीं है, वर्ण करना ही पड़ेगा। किन और दो चीजों के बीच में वर्ण करना है, या तो ट्रुथ विद ए कैपिटल टी, यह ट्रुथ जो है वो केवल एक सामाजिक एक नैतिक नियम नहीं है कि सत्य बोला करो, यह नहीं है। ट्रुथ का अर्थ है भगवान परमात्म तत्व। इस विश्व का जो रहस्य है वह या तो उसके साथ एक हो जाओ अन्यथा विनष्ट हो जाओ। इन दोनों के बीच में अब हम लोगों को चुन लेना है, उन लोगों को जो सचेत होकर के अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हैं, जिनके भीतर सार्थक करने की बात आती ही नहीं है, उनके लिए शायद कोई प्रश्न ही नहीं। यद्यपि मनुष्य की मनुष्यता इसी में है कि वह जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करे, जिसमें अभी तक ऐसी चेतना नहीं जगी है वह सचपरी है। जीवन को सार्थक यदि करना है तो हम लोगों को सारी मानव जाति को अब चुन लेना है कि वह अलग होकर के अपने अहंकार से जीना चाहता है, अपने विचारों से जीना चाहता है, अपने तरह तरह के इवेंट्स बना करके जीना चाहता है, अपनी तरह तरह की क्राइसिस बना करके जीना चाहता है, अपना अलग घरौदा बना करके जीना चाहता है, अथवा उस परम तत्व के साथ मिल करके रहना चाहता है, उसके साथ अपनी चेतना को एक करना चाहता है। यह एक चॉइस का समय आ गया है और लगता है कि अब वह चॉइस भी हमारी जहां तक अपने वर्ण की प्रक्रिया है, अपने संकल्प की प्रक्रिया है, वहां तक लागू होता है। अन्यथा एक पराशक्ति अज्ञात जिसके संबंध में हम कुछ नहीं जानते, वह सारे विश्व को अभिभूत कर रही और मनुष्य का बनाया हुआ सब कुछ खेल बिगड़ रहा है। मनुष्य का सारा खेल सारी व्यवस्था बिगड़ रही है और कोई नई व्यवस्था उस परम समर्थ सर्वसमर्थ भगवान के द्वारा होने को है। और हम चाहें तो अपने को उस शक्ति के प्रति, उस पराशक्ति के प्रति, उस भगवत शक्ति के प्रति अपने को उन्मुख बना करके हम उसके आवाहन की तैयारी करें, अन्यथा जो होगा तो होगा, अन्यथा विनाश निश्चित। हम अपने बलबूते पर नहीं रह सकते। अपने बलबूते पर का मतलब है कि मनुष्य अपने मनोराज्य मनोगत चिंतन विचार धारणा प्रयास जिसके मूल में मनुष्य का अहंकार होता है उसके आधार पर अब आगे नहीं चल सकता। वह अहंकार उसका छोटा हो और केवल अपने ही व्यक्तित्व को लेकर के हो, अथवा अपने ग्रुप को लेकर के हो, अपने राज्य को लेकर के हो, संपूर्ण मानवता को लेकर के भी यदि अहंकार है तो वह अब आगे अहंकार के बलबूते पर मनुष्य नहीं चल सकेगा। इसलिए योग अब इतना एसेंशियल हो गया है। पहले कभी था कि वो ऑप्शनल था, चाहो तो योग करो चाहो तो मत करो, इट वॉज ऑप्शनल। Now it is not compulsory. I don't say it, there is a compulsion. There is not compulsion. There is no compulsion. हम चाहें तो मिट जाए. But it is essential. Yoga is neither optional nor compulsory. It is only essential and basic to life. और यह योग जीवन व्यापी योग है. क्या है वह? हमारे जीवन में जितना भी हमारा जीवन है उसमें वह पूर्ण हो अथवा नहीं पूर्ण हो, असल में पूर्ण होने वाली बात योग में कुछ नहीं होती. ये जो मनुष्य की आतुरता है ना, अधीरता है, इजी वेज, जैसे विद्यार्थियों में इजी वेज थिंग्स होती, वेडी, उस तरह के कुछ योग के नाम पर चीजें चल रही हैं, जिस योग को हम भगवत गीता का योग, श्री अरविंद का योग, पूर्ण योग, जीवन व्यापी योग कहते हैं, उसमें एक जीवन, दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, यह एक निरंतर योग है. यह निरंतर और अधिकाधिक उन्नतिशील जीवन योग है. यह एक अभ्यास मात्र नहीं है कि जिसमें कुछ दिनों का कोर्स होता है, कुछ घंटों का कोर्स होता है. यह है वह योग जो हमारे सारे व्यक्तित्व के साथ संबंधित है, जिसका हमारे शरीर से, हमारे प्राणगत जीवन से, हमारे मनोगत जीवन से, हमारे चिंतन से, हमारे विचार से, हमारे अध्ययन से, हमारी क्रियाओं से, हमारे संबंधों से, सबसे जिसका संबंध है. और यह योग अधिकाधिक नित्य वर्धनशील योग है. हम इस योग के साधक बने, यह हमारा सौभाग्य होगा, उससे हमारा जीवन सार्थक होगा. इसमें अब कोई ओपिनियन की आवश्यकता नहीं.
क्या ऐसा समझा सकता है कि समस्त मानव समाज इस पूरी बात की भगवान कामना में भगवान से मुक्त होकर वेद और उपनिषद प्रतिपादित भगवान को जान जाए?
आ सकने वाली बात संभावना की है. संभावना की है, और संभावना तरह तरह की है, तरह तरह की है. मनुष्य कभी भी इन संभावनाओं को सीमित नहीं कर सकता कि बस इतना तो संभव है, इसके आगे संभव नहीं. अनंत अनंत संभावनाएं हैं.
तो क्या ये हो सकता है कि ये जितने धर्म की दीवारें हैं अलग अलग, ये टूट जाए?
ये तो टूट रही हैं, हमारे आपके सामने टूट रही है. हमारे आपके सामने टूट रही
है, आपके कहीं पर
हमारे आपके टूट ही रही है. लेकिन जो दीवारें टूटेंगी, लेकिन जो उसमें जो तत्व है जिसके आधार पर कोई धर्म बना, वह तत्व है आंतर जीवन को लेकर. प्रत्येक धर्म के दो अंश होते हैं, एक आंतरिक जो कि अध्यात्म है, एक बाह्य जो कि जो आचार है, पूजा है, बाह्य आचार है. तो बाह्य आचार तो सब टूट रहे हैं, और अंतर जीवन जो है वो तो अंतर प्यास से संबंधित है.